भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वपत्रेषु
नष्टप्रायेष्वपत्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
ग्रन्थराज श्रीमद्भागवतम् चौथा स्कंध 23वां अध्याय महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। श्लोक संख्या 49। बोलते हैं ना, 49 मतलब 49 49। अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् पृथुचरितं पृथयान् विमुक्तसङ्गः भगवती भवसिन्धु पोतपादे स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः अनुदिनमिदम् आदरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसङ्गः भगवती भवसिन्धु पोतपादे स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः अनुदिनम् इदम् आदरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथवन् प्रथयन् विमुक्तसङ्गः भगवति भवसिन्धु पोतपादे स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः
अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसङ्गः भगवति भवसिन्धुपोतपादे स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः
अनुदिनम् इदम् आदरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसङ्गः भगवति भवसिन्धुपोतपादे स च निपुणां लभते रतिं
मनुष्यः
अनुदिनम्
अनुदिनम्
प्रतिदिन
प्रतिदिन
इदम्
इदम्
यः
यः
आदरेण
आदरेण
आदरपूर्वक
आदरपूर्वक
शृण्वन्
शृण्वन्
सुनते हुए
सुनते हुए
पृथुचरितम्
पृथुचरितम्
ऋतु महाराज के वृत्तांत को प्रथयन कीर्तन करते हुए विमुक्त मुक्त
मुक्त
संगह साथ भगवती
भगवती
भगवान के प्रति भवसिंधु
भवसिंधु
अज्ञान रूपी सागर पोत
पोत
नाव
नाव
पादे
पादे
जिनके चरण कमल सह
सह
वह
च
च
भी
निपुणाम पूर्ण
पूर्ण
लभते
लभते
प्राप्त करता है
रतिम
रतिम आसक्ति
आसक्ति
अनुराग
अनुराग
मनुष्य
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 अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जो भी महाराज पुत्र के कार्यकलापों के वृत्तांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धापूर्वक पढ़ता कीर्तन करता तथा वर्णन करता है उसका अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भव सिंधु पोत पादे शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान के चरण कमल महत पदम कहलाते हैं जिसका अर्थ है कि सारा भौतिक जगत भगवान के चरण कमलों पर निर्भर करता है। जैसा कि भगवद गीता के 10वें अध्याय 8वें श्लोक में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवः, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत है। यह दृश्य जगत भी जिसकी तुलना अज्ञान सागर से की गई है भगवान के चरण कमलों पर आश्रित है। फलतः शुद्ध भक्त के लिए यह अज्ञान रूपी महासागर भी घट जाता है। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है उसे इस समुद्र को पार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने पहले से ही भगवान के चरण कमलों में स्थित होने के कारण उसे पार कर लिया होता है। वह भगवान अथवा भगवान के भक्त की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने से भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर हो जाता है। नियमित रूप से प्रतिदिन ऋतु महाराज के जीवन वृत्त को सुनाकर भी यह पद आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रसंग में विमुक्त संगह शब्द भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम प्रकृति के तीन गुणों से संग करते हैं, अतः इस संसार में हमारी स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण है। किंतु जब हम श्रवणम कीर्तनम द्वारा भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हम तुरंत विमुक्त संगह अर्थात मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पुत्र का भगवत धाम गमन नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।
ओम अज्ञान किलिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च प्रतिदितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा, तो इसमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। जैसा कि हम सब सुन चुके हैं, पृथु महाराज भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो तो स्वयं शक्त्यावेश अवतार हैं, परंतु जीव तत्व हैं, पर भगवान के महान भक्त। तो भक्ति का उद्देश्य है या भक्ति का सार है भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना, बोलना, स्मरण करना इत्यादि। ये प्रमुख कार्य है भक्ति में, श्रवण कीर्तन। और इसके बारे में बहुत सारे श्लोक भी हैं जो कि इस बात को जोर देते हैं कि हमें श्रवण कीर्तन ठीक से करना चाहिए। तो कौन से श्लोक, श्लोकों के बारे में आप जान सकते, आप बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में सुन के और कीर्तन करके, स्मरण करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और अन्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कौन से श्लोक याद आते हैं?
कीर्तनादिव कृष्णस्य नित्यसंगः परम बलि।
हाँ, पूरा श्लोक
कृष्ण वर्णम तुषकर्ष।
नहीं, ये श्लोक
कैसे शुरू होता है?
कलिंग दोषेण देह राजन हस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य नित्यसंगः परम बलि।
हाँ, तो क्या मतलब इसका?
कलयुग है वो दोषों से भरा हुआ सागर के समान है। उसमें एक ही गुण है, अच्छा गुण है, वो है भगवान के नाम कीर्तन,
भगवान के नाम का कीर्तन। तो इस दोषों के सागर में जहाँ भी हम देखेंगे हमको दोष ही दोष दिखाई पड़ेंगे। भक्त समाज में रहते हुए भी हमें दोष ही दोष दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये कलयुग का वातावरण है। फिर भी ये कलयुग में सबसे अच्छा गुण, सबसे महत्वपूर्ण बात, लक्षण ये है कि इस कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में के नाम का कीर्तन करने से हम मुक्त संगह, इस भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परम व्रजेत, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। क्या करने से? केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से। कीर्तन अर्थात नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन इत्यादि। ठीक है, ये हुआ एक श्लोक। और
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यः
चेच्छताभयम्। चेच्छता हम वेद करते हैं तो च इच्छता अभयम कहेंगे, लेकिन श्लोक का उच्चारण करते हैं चेच्छता अभयम। तो ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है, दूसरे स्कंद के प्रारंभ में ही हमें ये सुनाई देता है कि जब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि मृत्यु के द्वार पे खड़े होने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उसको किसके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत उत्तर देते हैं। क्या करना चाहिए?
भगवान ईश्वर
श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य च इच्छता अभयम्। जो अभय या निर्भय होना चाहता है उसे चाहिए कि वो भगवान ईश्वरो हरि, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे। तो इससे क्या होता है? हम भय से मुक्त हो जाते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु के भय से भी हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप लगा था कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो वो मृत्यु के द्वार पर खड़े थे। और हर एक साधारण व्यक्ति तो मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भयभीत होता है, अरे मुझे सब छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना है। परंतु जो नियमित रूप से सतत भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करता है वो निर्भय हो जाता है। तो पहले श्लोक में क्या बताया था, कीर्तन का लाभ क्या है, मुक्त संग्रह और परम व्रजेत, संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, भगवान को धाम को प्राप्त हो जाएंगे। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि ये हमारा कर्तव्य है कि जो अभय होना चाहता है उसको श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान कृष्ण का करना चाहिए। ठीक है, और कोई श्लोक बताइए।
कृष्ण परम पुरुष है, भक्ति उत्पत्ति वैपुंसा भय शोक व्यापक।
क्या मतलब ये खास करके किसके बारे में है?
श्रूयमाणायाम,
उन लोगों का जो कि श्रवण करते हैं। यस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, तो परम पुरुष श्री कृष्ण के बारे में जो नित्य रूप से श्रवण करते हैं तो उनके बारे में क्या, उनका क्या लाभ होता है? भक्ति उत्पद्यते पुंसः, भक्ति का उत्पादन होता है, उद्भूत हो जाते, भक्ति हृदय में उत्पन्न हो जाते अपने आप, क्या करने से, श्रवण करने से। और फिर भक्ति आने से क्या होता है, शोक मोह भय अपहा, ये निकल जाते हैं, इनका अपहरण हो जाता है। अपहा जैसे मलापहारी, मल प्रभा है ना, मलापा मल अपहारी, मल को निकाल देने वाली। तो ये भक्ति क्या है, शोक मोह भय अपहारी, शोक मोह भया भय अपहा। तो और एक श्रवण कीर्तन का लाभ क्या है कि भक्ति उत्पन्न होता है, होती है हृदय में, और शोक मोह भय से मुक्त हो जाते हैं। तो और कोई श्लोक बताइए, खास करके कुंती महारानी का श्लोक बोलिए। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कौन समझाएंगे इस श्लोक शब्दभेद का, कुंती महारानी क्या बोलती है? शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः, अर्थात अभीक्ष्णशः लगातार सतत, ऐसा नहीं कि थोड़ा समय के लिए किया फिर 10 दिन छुट्टी ले ली फिर से कर लिया, आज रविवार है आज नहीं, ऐसा नहीं, अभीक्ष्णशः निरंतर जो करते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति, स्मरण करते हैं, फिर नन्दन्ति, वन्दन्ति नहीं नन्दन्ति, नन्दन्ति अर्थात जो आनंद लेते हैं, जो भगवान कृष्ण के सेवा में श्रवण कीर्तन आदि में आनंद लेते हैं। स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितम जना, तव हितम जना है। तो जो लोग इस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, स्वीकार करते हैं, स्मरण करते हैं, कृष्ण कथा आदि में आनंद लेते हैं, क्या होता है उनका,
हित,
तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पदम्बुजं। तो क्या क्या मतलब है इसका, शब्द भेद करके समझाओ। तएव पश्यन्ति मतलब वो लोग पश्यन्ति देखते हैं, क्या देखते हैं, तव पदाम्बुजम वो आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकते हैं। तो जो लोग आपके बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, स्मरण करते हैं, आनंद लेते हैं, वो तएव पश्यन्ति, एव मतलब निश्चित ही, ता मतलब वो लोग निश्चित ही पश्यन्ति देखते हैं, क्या देखते हैं, तव पदाम्बुजम पद अम्बुज, अम्बुज मतलब कमल, आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। और आपके चरण कमलों का दर्शन करने से क्या लाभ होता है, भव प्रवाह उपरमम। अच्छा तो ये बोलते हैं कि तएव पश्यन्ति और अगले लाइन में तव पदाम्बुजम, तो इसके लिए कितना समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है क्या, अचिरेण बहुत लवकर, खूब लवकर हो जाते फटाफट, चिरम मतलब बहुत लंबा समय, अचिरेण मतलब बहुत जल्दी। तो जो आपके बारे में श्रवण कीर्तन आदि सब करते हैं और आनंद लेते हैं, इसमें शीघ्र ही वो आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। और ऐसे दर्शन करके क्या होता है, भव प्रवाह उपरमम, उपरमम मतलब खत्म, भव का जो प्रवाह है, भव मतलब क्या है,
संसार,
भव मतलब होना, पुनर्जन्म लेना, पुनर्मरना, पुनर्जीवित होना, बूढ़ा होना, मरना, जन्म लेना, ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये भी एक प्रवाह है, चक्र चलता रहता है ना। तो ये जो भव प्रवाह एक नदी के समान है, एक नदी जैसे नदी में पानी बहते रहती है, उसी तरह से भव का प्रवाह है, हम लोग बहते जा रहे हैं इसमें, कितने जन्म हो गए, बह के कभी एक योनि में, कभी दूसरे जन्म में, कभी तीसरे योनि में, कभी कुछ, अनादि काल से हम ये भव प्रवाह में बहते आए हैं। अभी कुंती महारानी कहती हैं, जब भगवान कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन होता है तो ये भव प्रवाह खत्म हो जाता है, वो जीव इस भव के तट को पहुंच जाता है, उस दूसरी ओर तट पे पहुंच जाता है जहाँ की भगवान का धाम है आगे। तो फिर और क्या, इस श्लोक के अनुसार क्या क्या लाभ है श्रवण कीर्तन आदि करने से, सबसे पहला
भगवान
के चरण कमलों का दर्शन होता है, बहुत देर से होता है नहीं,
बहुत शीघ्र
शीघ्र हो जाता है। और भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने से क्या होता है, भव प्रवाह खत्म, रुक जाता है उस जीव के लिए, संसार चलता रहेगा लेकिन उस जीव के लिए प्रवाह बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन आदि करने से क्या लाभ मिलते हैं, क्यों हमें करना चाहिए। तो हमारे भक्ति के जीवन में, जैसे हम लोग अभी गोकुल धाम में सेवा करते हैं, रहते हैं, और तरह तरह की सेवाएं हम करते हैं और करना भी चाहिए, कोई खेती करते हैं, कोई बगीचा देखते हैं, कोई गाय बैल की सेवा करते हैं, कोई रसोई करते हैं, कोई अर्चा वगैरह की सेवा करते हैं, कोई व्यवस्थापन देखते हैं, कोई साफ सफाई करते हैं, तरह तरह की सेवाओं में यहाँ के भक्त सब लगे हुए हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है, श्रवण कीर्तन। तो अन्य सेवाओं का महत्व अधिक बहुत है अवश्य, ऐसा नहीं है कि हम श्रवण कीर्तन करें फिर और अन्य कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। परंतु ऐसा भी न हो कि अन्य सेवाओं को करते करते हम श्रवण कीर्तन के ऊपर ध्यान नहीं दें या हमारा ध्यान छूट जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो पोषण है, आध्यात्मिक पोषण, वो ये श्रवण कीर्तन से आएगा। इसलिए हमारा जप, हमारा भागवत का श्रवण, हमारा भक्तों के साथ में नाम संकीर्तन भगवान के श्री विग्रह के सामने, तो ये सब हमारा मुख्य पोषण है जिनको कि हमें करना चाहिए। जैसे हम आहार लेते हैं ना, भोजन या प्रसाद लेते हैं, तो हमारा मुख्य आहार है चाहे वो चावल हो, भाकरी हो, सब्जी मुख्य है। उसके बाद में कुछ हम फल भी लेते हैं और भी तरह तरह की चीज़ भी लेते हैं, परंतु मुख्य पोषण क्या है? चपाती, सब्जी, भात, जो भी है,
दाल,
ये सब मुख्य। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे थाली में रहते हैं, भक्ति के थाली में, लेकिन श्रवण कीर्तन मुख्य है। इसके बारे में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, दुर्लक्ष नहीं केले पाहिजे श्रवण कीर्तनच्या बद्दल। दुर्लक्ष कुठेही नाही केलं पाहिजे, कुठच्याही सेवामध्ये नाही केलं पाहिजे, परंतु विशेष करून श्रवण कीर्तनच्या बद्दल दुर्लक्ष नाही केलं पाहिजे, कारण हे आमचं मुख्य कार्य आहे, आमची मुख्य सेवा आहे। त्याच्याने आम्हाला आध्यात्मिक शक्ती मिळते, आध्यात्मिक पोषण आमचं होतंय, मग इतर सेवा करायला आम्हाला उत्साह मिळेल, आमची भावना बरोबर राहील। नाहीतर आम्ही श्रवण कीर्तन बरोबर नाही केलं तर इतर सेवा पण करायची इच्छा होणार नाही, उत्साह कमी होणार, आणि केलं तरी ते जड वाटणार, बोज वाटणार की अरे कुठे आम्ही अडकलो, नको, असं हळूहळू हळू वाटायला सुरू होत आहे। त्यामुळे आमची चेतना बरोबर ठेवायला, आमचं सेवा, आमची जे सेवा भावना आहे त्याला कायम ठेवायला श्रवण कीर्तनवर अतिशय जोर दिलं पाहिजे आम्ही। असं पण नाही की श्रवण कीर्तनाच्या नावावर आम्ही दिवसभर असंच बसलो पुस्तक समोर घेऊन आणि इतर काही सेवा केली नाही, असं पण नाही। प्रत्येक कार्यासाठी एक वेळ असतो, जपचे वेळी जप, श्रवणचे वेळी श्रवण, कीर्तनचे वेळी कीर्तन, शेतीचे वेळी शेती, गोसेवाचे वेळी गोसेवा, इतर जे काही सेवा असतील त्यात ते आपापलं वेळ असतात, बरोबर आहे ना? स्वयंपाकचे वेळी स्वयंपाक, अर्चा वगैरेची सेवाच्या वेळी त्यांची सेवा केली पाहिजे। असं जर आम्ही केलं तर आमची, आमच्या भक्ती मार्गामध्ये आम्ही खूप तीव्रतेने प्रगती करू शकणार। तर हे मुख्य इकडे उपदेश आहे। तो यहां लिखा गया, भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार कर सकता है। सच निपुणाम लभते रतिम मनुष्य भगवती भव सिंधु पोत पादे। तो भव सिंधु, सिंधु मतलब सागर, ये भव, ये संसार के सागर को पार करने के लिए एक नौका, पोत पादे, पोत पोत मतलब नौका, ये क्या है? भगवती पादे, भगवान के चरण कमल वो नौका है। मराठी में नौका लगा है, नौका से मतलब नौका, नौका है जिसके, जिसमें बैठकर हम भव सागर को आसानी से पार कर सकते हैं। कौन सा श्लोक बता सकते हैं भागवत से आप? ब्रह्मा जी का बताया हुआ, समाश्रितये
पदपदं पदपदं
पदपल्लव प्लवम किन किन को पालो में कौन बोलेंगे
समाश्रितये पदपल्लवम प्लवम महत्पदं पुण्ययशो मुरारे महाभवामुदिल मत्सपदं परम पदं 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 तद् युगदं नकेशम
शब्द भेद करके बताओ थोड़ा इधर उधर हो गया लेकिन ठीक है
समाश्रितये पदपल्लवम प्लवम
पल्लवम नहीं पल्लव प्लवम
पल्लव प्लवम समाज पूरी तरह से जो आश्रय लेता है
समाश्रित केवल आश्रित नहीं सम आश्रित सम मतलब सम्यक रूपेण आश्रित सम्यक मतलब पूर्ण रूपेण जिस व्यक्ति ने पूर्ण रूपेण भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है समाश्रित किनका आश्रय लिया है समाश्रित ये पद पल्लव पद पल्लव पल्लव मतलब अंकुर या भगवान के चरण कमलों को पद पल्लव बोलते हैं तो जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का संपूर्ण आश्रय स्वीकार किया है तो आगे समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम प्लवम अर्थात नाव नौका
महत्पदम पुण्येषु मुरारे
वो मुरारी का वो भगवान का जिनका
पद चरण कमल है महत्पद महत्पद उस जगह को प्राप्त करता है
हाँ नहीं जिनका जिनसे सारा ब्रह्मांड पावन हो जाता है पवित्र हो जाता है समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे है तो किनके चरण कमल मुरारी का जिनके यश से सारा पवित्र सारा विश्व पावन हो जाता है पवित्र हो जाता है तो ऐसे भगवान श्री मुरारी या कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से वो चरण कमल एक नाव के समान बन जाते हैं जो कि भवाम्बुधिम भव अम्बुधिम अम्बुधि अर्थात सागर तो सागर के बहुत शब्द हैं संस्कृत में कितने सारे हैं जैसे मराठी हिंदी में बोलते हैं ना समुद्र सागर तो ऐसे संस्कृत में कौन से शब्द है सागर के लिए बोलिए सागर तो है समुद्र है सिंधु अम्बुधिम अम्बोज तो बहुत ऐसे शब्द हैं तो ये भवाम्बुधिम भव अम्बुधिम ये भव सागर हाँ भवाम्बुधिम
वत्सपदम
वत्सपदम
परमपदम
परमपदम पदम पदम यद विपदाम नतेशा तो ये सारा जो भव सागर है ये कैसे छोटे से गाय के बछड़े के खुर के नीचे जब कोई चिन्ह होता है उसमें बरसात का पानी गिर जाता है तो इतना पानी होता है तो इसको लांघ के जाना क्या मुश्किल होता है आसानी से हम चले जाते हैं कितना आसान हो जाता है तो उसी प्रकार से संपूर्ण भवसागर पार करना बहुत आसान हो जाता है जैसे कि एक छोटे से पानी के इसकी उप छलांग मार के हम जा सकते हैं इतना आसान हो जाता है जबकि हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं और ऐसा भवसागर पार करके परम पदम हम वो भगवान के धाम को प्राप्त कर देते हैं और यहाँ पर नहीं रहते हैं ये भौतिक सागर को पार करके चले जाते हैं ये भव सिंधु का लक्षण क्या है पदम पदम यत विपदाम यहाँ पे हर पद में विपद है हर कदम में क्या है कोई पता नहीं चल संकट है चलते चलते हम ध्यान नहीं रखेंगे आगे तो कहीं खड्डे में चले जाएंगे है ना खास करके हम जब यहाँ से गोकुलधाम चल के जा रहे हैं आप नहीं देखेंगे कहाँ खड्डा है कहाँ क्या है तो ऐसा वैसा हो जाएगा है कि नहीं पैर में मोच आ जाएगी, किसी को फिसल जाएंगे। तो पदम पदम यद विपदाम, पद पद में विपद, विपद मतलब संकट, कष्ट, समस्या। नहीं तो ये संसार ऐसे है, पद पद में विपद, परंतु भगवान का नाम परम पद है, उसमें ऐसे कोई विपद नहीं है। और उस धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के नाव के ऊपर सवार होकर। तो बड़ी बड़ी लहरें भी आती हैं तो बड़े नाव आसानी उसमें ऊपर नीचे रह जाते हैं, डूबते नहीं। तो ये यहाँ बात बताई है, भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। भगवती भव सिंधु पोत पादे। और एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भगवान के भक्तों का गुणगान करना, जो भी भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान के बारे में सुनने से, स्मरण करने से, बोलने से क्या क्या लाभ होते हैं, वही लाभ भगवान कृष्ण के भक्तों के बारे में करने से भी हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों ऐसे?
भगवान का आश्रय लिए, पूरी तरह आश्रय।
फिर भी और
भक्त भगवान चाहते हैं,
जो भगवान के लीलाओं के बारे में आदि सुनने से, बोलने से जो लाभ मिलते हैं, इतने सारे श्लोक हमने देखे, तो वही लाभ हमको भगवान के भक्तों के बारे में करने से होता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि वो केवल भगवान का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं और संसार की बातें नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे भक्तों के साथ में हम अगर ऐसे भक्तों के बारे में हम चर्चा भी करेंगे तो लाभ मिलेगा हमको।
क्यों मिलेगा? फिर हम कैसे पार हो जाएंगे?
अभिन्न है,
दोनों अभिन्न है। किस दृष्टि से अभिन्न है? तो भगवान की शुद्ध भक्ति भगवान है, फिर
उनका जो रिजल्ट आ रहा है दोनों का, वो कृष्ण प्रेम की प्रति।
प्रभुपाद बोला करते थे, एक लोहे को, लोहे की छड़ी ले लो, उसको आग में रखो, तो आग में रखने से क्या हो जाता है? लोहा गरम 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 हो जाता है। और लोहे को छू लो, क्या होगा? उंगली जल जाएगी। तो आप बोलेंगे, अरे उंगली कैसे जल गई, मैंने तो लोहे को स्पर्श किया था। परंतु लोहे ने आग का स्पर्श किया था और उस स्पर्श के द्वारा लोहे में आग के गुण भी आ गए। इसलिए हमने जब लोहे का स्पर्श किया तो लोहे में जो आग के गुण थे वो हमको मिल गए। तो शुद्ध भक्त कौन होते हैं? जो सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं, जो भगवान का स्पर्श करते हैं। कैसे स्पर्श करते हैं? चित्त से, चित्त स्पर्श। सदैव भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा आदि करते रहते हैं। उसी तरह से उसके कारण, ऐसे स्पर्श के कारण वही दिव्य गुण उनमें भी आ जाते हैं। इसलिए जो भगवान के लिए का गुणगान करने से लाभ मिलता है, भगवान के भक्तों का गुणगान करने से भी हमें मिल जाता है। भगवान और भगवान के भक्त कभी भी अलग नहीं होते हैं। भगवंतन से चित्र हमें कभी कभी हमें अस भगत नहीं कि भगवंत एकटे चैत मन नेहमी भगवंत त्यांच्या भक्तांच्या सोबत असतात। श्री राम असतील तर राम दरबार असतं त्यांच्या सोबत, लक्ष्मण, सीता देवी, हनुमान, श्री कृष्ण तर राधाराणी असतात, त्यांचे गाय असतात, मोर असतात, ग्वालबाल असतात, गोपीगण असतात। तर भगवंत कधी एकटे नसतात, त्यांचे भक्त त्यांच्या सोबत नेहमी असतात। ज्यावेळी मी भगवंतांचं नाव घेतो त्यांच्या भक्तांचं नाव घेतलंच पाहिजे. ज्यावेळी भक्तांचं नाव घेतो भगवंतांचं नाव घेतलंच पाहिजे. दोघांना आम्ही वेगळं करू शकत नाही, दोन्ही एक आहेत. कुठच्या दृष्टीने एक आहेत? प्रेमच्या दृष्टीने, प्रेमाच्या दृष्टीने एक आहेत. असं नव्हे की भक्त भगवंत झाले असं नाही, ते मायावाद दर्शन झाला. पण प्रेमाच्या दृष्टीने गुणवत्तामध्ये ते एक झाले. त्यामुळे भगवंतांचे गुण जे आहेत ते त्यांच्यामध्ये पण प्रकट होतात अणुमात्रामध्ये. त्यामुळे इकडे काय म्हटलंय, जो भी महाराज पृथ्वी के कार्यकलापों के वृत्तांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, कीर्तन करता है तथा वर्णन करता है, उसका अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है. इसका अर्थ ये है कि जो भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में श्रवण कीर्तन आदि करता है, तो ऐसा करने से अपने आप ही उस व्यक्ति के हृदय में भगवान के चरण कमलों के बारे में भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी. कभी भी सीधे भगवान के पास नहीं जा सकते, भगवान के भक्तों के माध्यम से ही जाना पड़ेगा. हो ना, प्रत्यक्ष डायरेक्ट में भगवंताकडे जाऊ शकत नाही. आता आम्हाला जर पंतप्रधानांना भेटायचं आहे का आम्ही जाऊ शकतो का? असंच सरळ त्यांच्या घरामध्ये आम्ही प्रवेश करू शकतो का? 100 लोक राहतील पुढे. कोण आहे तुम्ही, काय, कुठे जाणार, कसं चाललात? पण त्यांचे जे सेवक असतात निकटचे, त्यांची ओळख जर राहिली आमची, ते मला सांगा पाठीमागच्या दरवाजापासून तुम्हाला घेऊन जातील. या असं तुम्हाला घेऊन जातो, ओळख करून देतो. तसंच भगवंतांच्या भक्तांच्या माध्यमेने आम्ही भगवंतांकडे भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. पृथ्वी महाराज शुद्ध भक्त आहेत, त्यामुळे इकडे म्हटलं या श्लोकमध्ये की पृथ्वी महाराजांचं गुणगान जर आम्ही केलं तर आपोआप भगवंतांच्या प्रती जे एक श्रद्धा आणि प्रेम आहे ते पण उत्पन्न होणार. हरे कृष्णा, हरी बोल. अच्छा श्लोक है ना आज का, बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें आ गई. हरी बोल. सगळे ठीक आहेत ना? आता पाऊस आला, लवकर आला, कसं काय? आता पावसाचं काही हे नाही, आता कधी येत आहे पाऊस? आता मागच्या महिन्यामध्ये कितीदा आला त्याच्या महिन्यामध्ये असा की नाही? कधीही येत पाऊस. पण आता शेतीसाठी बरं झालं की नाही? बरं आहे का आता पाऊस आला तर?
तयार करण्यासाठी चांगला,
तयार करण्यासाठी. पीक खराब झाली पण आता पुढे नांगर वगैरे लावायला बरं झालं, तयार करायला बरं झालं. पण जे शेती होती ते खराब झाली आता. हरे कृष्णा, हरी बोल. आता पावसामध्ये, पावसाच्या ऋतूमध्ये सगळ्यांना आता वात, वातची समस्या सुरू होणार की नाही? त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे? तेल मालिश. कुठचं तेल? मोहरीचं तेल. पण कुठचं? बाहेर बाजार रिफाईंड तेल नाही, कच्च्या घाणीचं तेल. तर ते त्याची जर आम्ही व्यवस्था केली तर तुम्ही सगळं करणार काय? लावणार करणार उत्साहाने उत्तर आलंच
त्यांना काही वाचचे प्रॉब्लेम नाही अजून युवक आहे
तर प्रत्येक दिवस खास करून पावसामध्ये थंडीमध्ये आम्ही मोहरीचं तेल अंगाला लावलं पाहिजे असं घासून घेतलं पाहिजे स्वतःच्या अंगावर हातात पायात डोक्यावर कानात तळव्यामध्ये पायाच्या तळव्यामध्ये पायाला छातीवर फाटीवर तर होणार नाही दुसऱ्याने केलं तर चालेल पण असं रोज करा मग आंघोळ करा त्याच्यानंतर करणार काय तुम्ही आम्ही मागून घेऊ का पण मागून घेऊन असंच पडलं ते आणि मग काय उपयोग ते आम्ही दुसऱ्या प्रांताकडून उत्तर प्रदेशकडून मागवत आहे स्वस्त मिळते तिकडे आणि त्याच्यामधून आणत आहे आम्ही ते वापरणार काय किशोर प्रभू ते सांगितलं का त्यांना आता तयार आहे तयार करून ठेवलं त्यांनी ट्रेन मध्ये पाठवायचं ना ते ट्रेन असतात ना विशेष ट्रेन
ते ह्या एरियात नाही पंजाब हरियाणा तिकडेच आहे
अच्छा पण तेल तयार झालंय ठीक आहे मग बघू कसं करायचं पण तेल लावून जायचं नाही इकडे तिकडे मग सेवा करायची खूप हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल